أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستوں اور اس کاریکرم کے سبھی درشکوں السلام علیکم. ہم نے اب تک اپنے کاریکرم میں واجب نمازوں سمبندھت احکام آپ کے سامنے بیان کیے. آج ہم اپنے اس کاریکرم میں مستحب نمازوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس سے سمبندھت احکام کو بیان کیا جائے گا. جیسا کہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ مستحب نمازیں بہت ادھک ہیں. اگر ان سبھی کو کاریکرم میں بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے آوشک یہ ہے کئی کاریکرم اسی بات پر آدھارت ہوں, لیکن ہم سبھی کو آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے, بلکہ ہمارا پریتن یہ ہوگا کہ وہ مستحب نمازیں جو بہت مہتوپورن ہیں اور جن کی اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے ان کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے. سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے بیان کر دی جائے وہ بہتر ہے, وہ یہ ہے کہ مستحب نمازوں کو نافلہ نمازیں کہا جاتا ہے. سب سے پہلی نماز جو مستحب نمازوں میں آتی ہے, جس کی اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے, وہ ہے نماز غفیلہ. نماز غفیلہ ایک ایسی نماز ہے جس کے لیے کہا یہ گیا ہے کہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں اس نماز کو پڑھا جائے. اس کی بہت تاکید کی گئی ہے اور اس کے بارے میں بہت ثواب بیان کیا گیا ہے. نماز غفیلہ ایک ایسی نماز ہے جس کے پڑھنے کا ایک وشیش طریقہ ہے, جس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. نماز غفیلہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو رکعت ہے, جیسے کہ ادھکتر ہماری مستحب نمازیں جو ہوتی ہیں وہ دو رکعت ہی ہوتی ہیں, کہ نماز غفیلہ دو رکعت ہے. پہلی رکعت میں جس سمے سورہ الحمد پڑھا گیا ہے, یعنی نیت کرنے کے بعد جب سورہ حمد پڑھ لیا ہے, تو اس کے بعد دوسرا سورہ کوئی نہیں پڑھنا ہے. یہ ایک ایسی نماز ہے جس میں حمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ نہیں پڑھنا ہے, بلکہ ایک آیت ہے جس کو پڑھنا ہے. وہ آیت کون سی, میں آپ کے سامنے بھی پڑھ کے تھوڑی سی آیت پڑھوں گا, اس کے بعد میں آپ کو اس آیت کا حوالہ دے دوں گا, آپ اس کو قرآن میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. تو الحمد کے بعد جو آیت پڑھنی ہے وہ یہ ہے, وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاصِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. یہ وہ یہ آیت ہے, یعنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87. یہ وہ آیت ہے جس کو انت تک پڑھنا ہوگا. جب انسان نے نماز غفیلہ پڑھنا شروع کی, تو جب الحمد کا سورہ سماپت ہو جائے گا تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 کو وہ شروع سے لے کے انت تک پڑھے گا. یہ پہلی رکعت کا طریقہ ہے. جب پہلی رکعت پڑھ چکا, اس کے بعد وہ آدمی رکوع میں جائے گا, رکوع کے بعد دو سجدے کرے گا, سجدے کرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہوتا ہے. اب دوسری رکعت کا نمبر آیا, تو دوسری رکعت میں کہا یہ گیا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہر نماز کی طرح اس میں بھی پہلے سورہ حمد پڑھے گا. جب سورہ حمد پڑھ چکا, تو سورہ حمد کے بعد دوسری رکعت بھی کوئی دوسرا سورہ نہیں پڑھنا ہے, بلکہ اس سمے جب سورہ حمد پڑھ کے سماپت کر چکا تو یہ آیت پڑھے گا, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اس کے آگے آیت آگے بھی پڑھتی ہے, یہ آیت پوری کی پوری انسان کو پڑھنا ہوگا. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 ہے, یعنی سورہ حمد کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 59 کو پورا کا پورا پڑھنا ہے. یہ ہو گئی سورہ حمد کے بعد جو چیز پڑھنی تھی وہ. اس کے بعد ایک وشیش چیز ہے, جب قنوت میں ایک وشیش دعا ہے جو پڑھی جائے گی, جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز غفیلہ جب انسان پڑھ رہا ہے تو یہ دعا پڑھے. وہ دعا کون سی, میں آپ کے سامنے بھی پڑھتا ہوں. سب سے پہلے یہاں سے شروع کرے گا, اللہم انی اسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها الا انت ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تغفر لی ذنوبی اللہم انت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فاسألک بحق محمد و آل محمد وعلیہم السلام لما قضیتها لی. یہ وہ دعا ہے جو انسان قنوت میں پڑھے گا. تو یہ وہ طریقہ ہے نماز غفیلہ پڑھنے کا, کہ اس پرکار پڑھے گا, اس کے بعد जिस प्रकार हमारी नमाज सुबह पढ़ी जाती है उस प्रकार पूरी नमाज को आगे बढ़ाएगा, यानी उसके बाद रुकू करेगा, दो सजदे करेगा और तशहुद सलाम पढ़ के नमाज को समाप्त कर देगा। तो ये सबसे पहली चीज़ जो हुई नमाज गुफैला के बारे में जो मैंने आपके सामने बयान किया, इसके इसकी फजीलत के बारे में और इसके संबंधित और जो सवाब है इसके लिए हम अपनी बड़ी किताबों को देख सकते हैं जो फ़िक्र से संबंधित है, उसमें हम इसके बारे में बयान किया गया जिसमें देखा जा सकता है। दूसरी चीज़, दूसरी नमाज जो मुस्तहब है उसे कहते हैं नवाफिले योमिया, यानी रोज़ाना जो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं उसके साथ कुछ नाफिला नमाज़ें हैं जो मुस्तहब हैं और इसके बारे में बहुत सिफारिश की गई और कहा गया है इनको पढ़ना चाहिए। सबसे पहली नाफिला वो है सुबह की नाफिला, यानी सुबह की नमाज से पहले दो रकत नमाज है जिसको पढ़ना मुस्तहब है, ये मुस्तहब नमाज़ों में से नाफिला नमाज कहा गया, इसको सुबह की नाफिला नमाज कहा जाता है। अब प्रश्न यह है इसका समय क्या है, इसका समय नमाज सुबह से पहले है और बेहतर यह है कि जो फजर अव्वल होती है उससे पहले इसको ना पढ़ा जाए, फजर अव्वल के बाद जो है इस नमाज को पढ़ा जाए और सुबह की नमाज से पहले इसको अंजाम दिया जाए। तो यह सुबह की नाफिला हुई। उसके बाद जोहर की नमाज आती है, जोहर की नाफिला भी आठ रकत है, लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि हर वो आठों रकत नमाज दो दो रकत करके पढ़ी जाएंगी, यानी चार नमाज़ें पढ़ी जाएंगी दो दो करके पढ़ी जाएंगी और इसका समय नमाज जोहर से पहले है और यानी नमाज जोहर से पहले पढ़ी जाएगी इसकी ये नमाज़। इसका समय क्या है, इसका समय वो शाखिस यानी वो लकड़ी जिससे हमने आपको किसी कार्यक्रम में बताया था अपने कि जिससे हम जोहर का समय नापते थे, उस लकड़ी का साया अगर 2/7 तक पहुंच जाए तो इस नाफिला नमाज का समय समाप्त हो जाता है, यानी 2/7 तक उस लकड़ी के साये के पहुंचने से पहले तक नमाज जोहर की नाफिला का समय रहता है, उसके बाद इसका समय समाप्त हो जाता है। उसके बाद असर की बात आती है, असर की भी आठ रकत नाफिला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोहर की नाफिला पढ़ी जाएगी, यानी दो दो रकत करके पढ़ी जाएगी, सेम वैसे ही है। और इसका समय यह है कि जब उसी लकड़ी का जिसे हम जवाल का समय नाप रहे थे उसका साया 4/7 पहुँच जाए, तो अगर उसका 4/7 पहुँच जाता है तो उसके असर की नाफिला की नमाज का समय समाप्त हो जाएगा, इस नाफिला को उससे पहले ही पढ़ना होगा। तो हमने अभी आपके सामने बताया सुबह की नाफिला, जोहर की नाफिला, असर की नाफिला। उसके बाद जो नाफिला होती है मुस्तहब नमाज है वो है मगरिब की, ये मगरिब की नाफिला नमाज 4 रकत है और ये मगरिब की बात पढ़ी जाएगी, ये भी 2-2 रकत करके ही पढ़ी जाएगी, मगरिब की बात पढ़ी जाएगी। और इसका समय क्या है, इसका समय ये है कि जिस समय सूर्य छुप जाता है तो पश्चिम की तरफ क्षितिज पर एक लाली रहती है, जब तक वो लाली है तब तक मगरिब की नाफिला नमाज पढ़ने का समय रहता है, जैसे ही वो लाली समाप्त हो जाती है इसका समय भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद ईशा की नाफिला आती है, ईशा की नाफिला 2 रकत है और इसमें विशेष बात यह है कि ये दोनों रकत नमाज बैठ के पढ़ना है, इनको खड़े होकर नमाज नहीं पढ़नी बल्कि बैठ के पढ़नी, उससे पहले जितनी नमाज़ें हमने आके बयान की सुबह की, जोहर की, असर की और मगरिब की, सब खड़े होकर पढ़नी थी, इसको बैठ के नमाज को पढ़ना है और ये ईशा की नमाज के बाद पढ़ी जाएगी। इसका समय ईशा की नमाज से लेके मगरिब की नमाज के समय तक रहता है, इस समय में किसी भी वक्त इंसान नाफिला को पढ़ सकता है। तो ये वो नमाजें थीं जो यौमिया नमाजें नाफिला नमाजें जो हमने आपके सामने बयान की। अब कभी कभी ऐसा था कुछ विशेष दिन आते हैं, उन विशेष दिनों में विशेष प्रकार की नमाजें मुस्तहब होती हैं, जैसे कि जुमे के दिन जब जोहर की नमाज़ होती है तो हमने आपको बताया जोहर की 8 रकत नाफिला है और असर की 8 रकत नाफिला, इन नाफिला के अतिरिक्त 4 रकत और नमाज मुस्तहब है जुमे के दिन जोहर और असर के समय पढ़ी जाए, ये मुस्तहब है। उसके बाद जोहर और असर की जो नाफिला है अगर इंसान यात्री है तो उसके ऊपर ये नाफिला नहीं है, उसको ये नाफिला नहीं पढ़नी है, लेकिन अगर ईशा की नाफिला पढ़ना चाहे तो उसको चाहिए कि ईशा की नमाज की नाफिला को पढ़े, लेकिन कस्दे रजा के साथ। अब कस्दे रजा किसे कहते हैं, कस्दे रजा यानी ईश्वर से सवाब की आशा के साथ ईशा की नमाज को भले ही वो यात्री हो उसको पढ़ना चाहिए, ये वो नाफिला थी जो हमने आपके सामने बयान किया, यौमिया चीज़ें थी जो हमने आपके सामने बयान की। तो हमने अभी मुस्तहब नमाज़ों में आपके सामने दो चीज़ें बयान की, सबसे पहले नमाज गुफैला बयान की, उसके बाद नवाफिले यौमिया बयान की। उसके बाद मुस्तहब नमाज़ों में एक जिसका बहुत सवाब बयान किया गया है और कहा गया कि अगर इसको इंसान पढ़े तो उसका चेहरा मुनव्वर होता है और इस प्रकार के बहुत से सवाब बयान किए गए हैं, वो है नमाज शब जो मुस्तहब नमाज़ों में से है। नमाज शब अगर कुल पूर्ण रूप से देखा जाए तो 11 रकात है, इसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग नियतों से नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। पहली चार नमाज़ें यानी आठ रकत नमाज़ पढ़ी जाएगी नाफले शब की नियत से। ये दो दो रकत करके होंगी, हर दो रकत इस नियत से पढ़ी जाएगी, नाफले शब पढ़ता हूँ कुर्बतन लिल्लाह, इस नियत से पढ़ी जाएंगी आठ रकतें। उसके बाद दो रकत पढ़ी जाएगी नाफले शब की नियत से, उसके बाद एक रकत पढ़ी जाएगी नमाज वितर की नियत से। ये पूर्ण रूप से जब इनको रखा जाएगा तो इसको नमाज शब कहा जाता है, यानी आठ रकत नाफले शब, दो रकत नमाज शुफ और एक रकत नमाज वितर। और इसमें नमाज शब का समय क्या है? नमाज शब जब आधी रात बीत जाती है तो उस समय से नमाज शब का समय आरंभ होता है और सुबह की नमाज के समय तक रहता है, आधी रकत से सुबह की नमाज के समय तक। लेकिन बेहतर ये है कि जितना सुबह की नमाज के समय के करीब इस नमाज को पढ़ा जाए उतना इसका सवाब ज़्यादा है। इसके बाद अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, मसलन यात्री है, थका हुआ है, या कोई और व्यक्ति है जो आधी रात के बाद जिसके लिए नमाज़ पढ़ना सख्त है, वो नींद से नहीं उठ सकता है, तो उसके लिए कहा यह गया है कि अगर कोई इंसान यात्री है या उसके लिए आधी रात के बाद उठना सख्त है तो वो रात्रि के आरंभ में ही नमाज शब को पढ़ सकता है, यानी जिस समय हमारी रात आरंभ होती है मगरिब इशा के बाद ही नमाज शब की नियत से नमाज को पढ़ सकता है। तो ये तीन नमाज़ें हो गईं, नमाज गुफैला, नमाज यौमिया यानी नवाफिल नमाज यौमिया और नमाज शब। उसके बाद जो और मुस्तहब नमाजें में से आती है, नमाज ईदैन यानी ईद उल फितर और ईद कुर्बान, ये वो नमाजें हैं जो गैबत के ज़माने में मुस्तहब है जिनको पढ़ा जाना। नमाज ईदैन का वक्त क्या है, समय क्या है, किस समय पढ़ी जाएगी? नमाज ईदैन का समय सूर्य जिस समय उगता है उस समय से आरंभ होता है और जवाल के समय तक इसका समय रहता है। और मुस्तहब यह है कि नमाज ईदैन को जिस समय सूर्य उगता है और रोज़ शुरू होता है उसी समय यानी आरंभ में ही, दिन के आरंभ में ही इस नमाज को पढ़ लिया जाए। इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज ईदैन यानी ईद उल फितर और ईद कुर्बान ये दो रकत नमाज है, इसमें नौ कुनूत हैं, पहली रकत में पाँच कुनूत हैं, दूसरी रकत में चार कुनूत हैं। इसका तरीका यह है कि पहली रकत में सूरह हंद पढ़ेगा, सूरह हंद पढ़ने के बाद दूसरा सूरह पढ़ेगा, उसके बाद तकबीर कहेगा, कुनूत पढ़ेगा, तकबीर कहेगा, कुनूत पढ़ेगा, तकबीर कहेगा, कुनूत पढ़ेगा। इसी तरीके से पांचवा कुनूत पढ़ने के बाद तकबीर कहेगा और तकबीर कहने के बाद रुकू में जाएगा और सजदा करेगा, उसके बाद खड़ा होगा, फिर सूरह हंद पढ़ेगा, दूसरा सूरह पढ़ेगा, फिर तकबीर कहेगा, कुनूत पढ़ेगा, तकबीर कहेगा, कुनूत पढ़ेगा। इसी प्रकार चार जब कुनूत हो जाएंगे उसके बाद तकबीर कहेगा, रुकू करेगा, सजदे करेगा और तशहुद और सलाम पढ़ के अपनी नमाज को समाप्त कर देगा। ये नमाज ईदैन पढ़ने का तरीका है। इसी प्रकार नमाज ईद उल फितर पढ़ी जाएगी और इसी प्रकार नमाज ईद कुर्बान पढ़ी जाएगी। उसके बाद इसमें नमाज ईदैन और नमाज ईद उल फितर और नमाज ईद कुर्बान में जिस समय कुनूत पढ़ रहा है तो कोई भी दुआ पढ़े, कोई भी जिक्र पढ़े, फ़र्क नहीं पड़ता है, मुस्तहब है, कोई भी जिक्र कोई भी दुआ पढ़ सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि वो जो ईद की प्रसिद्ध दुआ है यानी वही अल्लाहुम्मा अहल किब्रियाए वल अज़मा व अहल जूद वल जबरूत, ये जो दुआ मशहूर दुआ है, ये प्रसिद्ध दुआ है, इसको पढ़ा जाए, ये मुस्तहब है यानी नमाज ईद उल फितर और नमाज ईद कुर्बान में। उसके बाद हमारे कुछ फुकहा ये कहते हैं कि जिस समय ईद उल फितर की नमाज के लिए जा रहा है इंसान तो उससे पहले यानी नमाज से पहले, पढ़ने से पहले वो कुछ खाए, फितरा दे और इस प्रकार के काम अंजाम दे, ये मुस्तहब है। और अगर नमाज ईद उल फितर और ईद कुर्बान जमात से पढ़ी जा रही, जैसा कि हमने बताया ये मुस्तहब नमाज़ें हैं गैबत के ज़माने में, लेकिन चूंकि ऐसे वाजिब हैं लिहाजा इनको जमात से पढ़ा जा सकता है, तो अगर ये जमात से पढ़ी जा रही हैं तो एहतियातन लाजिम ये है, एहतियातन वाजिब ये है कि इसके बाद दो खुतबे भी पढ़े जाएँ। तो ये वो चीज़ें थीं जो नमाज ईद उल फितर और नमाज ईद कुर्बान से संबंधित थी, हमने आपके सामने बयान की। तो ये वो मशहूर नमाजें थीं, प्रसिद्ध नमाजें थीं जो मुस्तहब थीं, हमने आपके सामने बयान किया। अब अगर कुछ चीज़ें हम संक्षेप में बयान करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जितनी भी नमाजें हैं मुस्तहब नमाजें हमारे, अगर हम अपने आसपास देखें, अपनी किताबों में देखें, तो जितनी भी मुस्तहब नमाजें सब की सब दो रकतें हैं सिवाय दो नमाजों के, एक नमाज वितर, दूसरे नमाज आराबी। ये केवल ऐसी नमाजें हैं जो दो रकतें हैं, उसके अलावा जितनी भी मुस्तहब नमाजें हैं वो दो रकत हैं। उसके अलावा एक और बात कि जितनी भी मुस्तहब नमाजें हैं उनमें से किसी को भी जमात से नहीं पढ़ा जा सकता है, केवल उसी नमाजों को मुस्तहब, उन्हीं मुस्तहब नमाजों को जमात से पढ़ा जा सकता है जो स्वयं तो वाजिब हैं लेकिन किसी कारणवश वो मुस्तहब हो गई हैं, जैसे नमाज ईदैन के ऐसे तो वाजिब है लेकिन चूंकि غیبت کا زمانہ ہے اس لیے مستحب ہوگی، لہٰذا ان کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور بات جو انتم بات بھی ہو سکتی ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مستحب نماز کسی بھی رکعت میں ہو، حمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنے کی آوشیکتا، یعنی واجب نہیں ہے کہ حمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھا جائے، بلکہ اگر کیول سورہ حمد ہی پڑھا جا رہا ہے تو اس کے لیے کافی ہوگا، اس کی نماز صحیح ہوگی، مگر یہ کہ کوئی ایسی نماز ہو جس میں وشیش طور سے وشیش سورہ کے بارے میں کہا گیا ہو۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، وہ احکام تھے جو نمازیں مستحب نمازوں سے سمبندھت تھے۔ ہم نے آج کے کاریکرم میں آپ کے سامنے کچھ مستحب نمازوں کو بیان کیا، جیسے نماز غفیلہ کے بارے میں، نماز یومیہ نوافل کے بارے میں، نماز عیدین کے بارے میں، اور نماز شب کے بارے میں۔ اس کے بعد بھی ہم آپ کے سامنے احکام سے سمبندھت اور بھی کاریکرم لے کر اپستھت ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سبھی کو ایشور کے سپرد کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔